संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नब्बेवीं गाथा चल रही थी, टीका अपन ने पढ़ ली थी, उसके बाद में जो अपनी टिप्पणी वगैरह रह गई हैं उन्हें 5-10 मिनट में पढ़ लेते हैं, फिर अगली गाथा चलेगी। उक्त गाथा और उसकी टीका में मात्र इतना ही कहा गया है कि जिस प्रकार एक कमरे में अनेक दीपक जलते हों तो ऐसा लगता है कि सबका प्रकाश परस्पर मिल गया है, एक में एक हो गया है, किंतु जब एक दीपक उठाकर ले जाते हैं तो उसका प्रकाश उसके ही साथ जाता है और उतना प्रकाश कमरे में कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि कमरे में विद्यमान सभी दीपकों का प्रकाश अलग अलग ही रहा है। इसमें तो कोई समझाने की बात है ही नहीं। उसी प्रकार इस लोक में सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह्य रूप से रह रहे हैं। महासत्ता की अपेक्षा से एक ही कहे जाते हैं, तथापि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं। इस लोक में विद्यमान सभी चेतन अचेतन पदार्थों से मेरी सत्ता भिन्न ही है, ऐसा निर्णय होते ही पर से एकत्व का मूह विलीन हो जाता है और राग द्वेष भी छूटने लगते हैं। ये जो इसमें समझने की बात यह है, महासत्ता एक होती है, वो तो महासत्ता के बारे में अपने मुख्य भाइयों में बहुत कम समझ है, क्योंकि स्वरूपास्तित्व वो की इतनी चर्चा हुई और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव की दीवार हमने इतनी लंबी चौड़ी खड़ी की कि अब किसी दूसरे से जुड़ने की कोई भी अपेक्षा हमारे चित्त को स्वीकार नहीं होती है। जबकि महाशास्त्र तत्वा सूत्र में जो संग्रह नए है वो इसी के आधार पर खड़ा हुआ है, इस महासत्ता के आधार पर। सद्रव्य लक्षणम, जो हमने द्रव्य का लक्षण सद बनाया है, क्योंकि जितने पदार्थ हैं वे सभी द्रव्य हैं और उनमें उत्पाद ध्रुव वाला लक्षण पाया जाता है, गुण पर द्रव्यम वाला लक्षण पाया जाता है। तो उस दृष्टि से एक ऐसा रिश्ता है कि हम और तुम एक हो सकते हैं, हम और पुद्गल भी एक हो सकता है, हम और आकाश भी एक हो सकते हैं, क्योंकि सब द्रव्य है ना। जैसे अपन कहते हैं तुम भी जैन हम भी जैन, तो हम सब एक ही हैं। अब अंदर में भेद जो डालते 13 पंथी 20 पंथी का नहीं डालते हैं, तो एक अपेक्षा वो भी है और उसे जानना भी जैन दर्शन को जानने के लिए बहुत जरूरी है। और मुमुक्षुओं को प्राप्त हो उसकी चर्चा, ऐसा ये प्रवचन सार ग्रंथ ही है। ये अभिज्ञान के तत्व प्रज्ञापन आएगा उसमें इस बात की चर्चा आएगी। तो कहते हैं महासत्ता की दृष्टि से हम सब एक हैं। लोक में अपने ऐसा कहते हैं ना कि भाई सब कर्मचारी एक कैसे हो गए, उसमें IAS ऑफिसर भी एक कर्मचारी है और एक चपरासी भी कर्मचारी है, फिर सब कर्मचारी एक हो जाते हैं, हर प्रांत के एक हो जाते हैं, हर जाति के एक हो जाते हैं, वहां कोई बाधा खड़ी नहीं होती, वह सब कर्मचारी कर्मचारी के कर्मचारी के हित एक साथ हैं। जो भी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी 2% 5% 25% तो सबकी बढ़ेगी नीचे से ऊपर तक अनुपात में, इसलिए सबके एक साथ जुड़े हैं तो सब एक हो जाते हैं ना। और उसको अभी गहराई से एकत्व का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। भारत में पूरे देश ने अपने में जब एकत्व का अनुभव किया कि हम सब एक हैं, हिन्दू मुसलमान सिख ईसाई, जब तक अंग्रेज लोग हमारे इन टुकड़ों में हमें बांटते रहे तब तक वे राज करते रहे। और जब उन्होंने देखा कि किसी भी रूप में सही अंदर अंदर झगड़ा कितने भी क्यों ना हो, फिर ये एक हो गए हैं। क्योंकि सब समझते हैं कि हमें सबको गुलामी है, सबको आजादी मिलेगी। देश आजाद होगा तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एक नागरिक आजाद नहीं होगा, सभी आजाद होंगे ना। तो हम में एकत्व एकता आ गई तो भाग गए अंग्रेज साफ समंदर पार। तो उसकी भी कितनी बड़ी उपयोगिता है ना, लौकिक दृष्टि से देख लो और भी कई दृष्टियों से देखते। और वो ये के सत्य है, मतलब वो बात कोई काल्पनिक नहीं है क्या। लेकिन वो एकता हमारी इतनी ना बढ़ जाए कि व्यक्ति की कोई सत्ता ही नहीं रहे और व्यक्ति गुलाम हो जाए। एकता के हित में साहब ये नियम वो नियम, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आप इतने इतने नियम बन जाए कि अपन उसको हिलडुलना भी मुश्किल हो जाए। तो हमारा देश कहता, संविधान कहता है कि नहीं, व्यक्ति भी उतना ही स्वतंत्र है। ये जो सारी बातें हैं कि हम संलेखना नहीं ले सकते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट हमें हस्तक्षेप कार्य कर रही, उसी एकता का तो परिणाम है। नहीं, हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है, हम खाएं नहीं खाएं, हम स्वतंत्र हैं क्या। नहीं, एक आदमी कम से कम इस बात में स्वतंत्र है ना कि वो कब खाए, कितने बजे खाए, खाए नहीं खाए, एक रोटी खाए दो रोटी खाए। इतनी आजादी तो सारे देश के बच्चे बच्चों को मिली है ना। अब हमारे खाने पर भी प्रतिबंध लगने लग जाए कि नहीं तुम यही खाओगे, इतना ही बजे खाओगे, दूसरी खा नहीं सकते, इस वक्त हम जब छुड़वाएंगे या छुड़वा देंगे तो साहब एक ऑर्डर निकलेगा और सबको समाधि मरण दिला देंगे, तो सब समाधि मरण ले लेना। मैंने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बाधित नहीं होना चाहिए और सारे देश की एकता भी रहना चाहिए। महासत्ता हमारी सारी की एकता को बताती है कि हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम कहोगे नहीं साहब कैसी बात करते हो आप, कैसी रहना चाहिए। अब हम जहां चाहें वहां थूक भी नहीं सकते, हम जहां चाहें वहां पेशाब भी नहीं कर सकते। कम से कम अंग्रेजों के जमाने में इतनी जो आजादी थी कि जहां पेशाब लगती थी गाड़ी खड़ी करी और बैठ गए। अब अच्छा भारत आजाद हुआ, तो बाथरूम खोजते फिरो, और 10 मील तक यदि बाथरूम नहीं मिले तो पेशाब किए बैठे रहो। हम निरंतर अनुभव करते हैं ना, गाड़ी कार मार से जाते हैं, बस से जाते हैं, रेल में तो उसी में ही होती है तो आप पेशाब वगैरह कर लेते हो, लेकिन बस तो जहां खड़ी होगी वहीं कर सकते हो ना। तो बीच में भी बुजुर्ग लोगों को तो लगती ही है, तुम लोगों को भी लगती तो होगी, उसका अनुभव तो होगा ना कभी कभी, थोड़ी देर रोकना पड़ती होगी तो दिक्कत होती होगी। मतलब उसको अनुभव के लिए सिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो हम यानी आप समझ लो कौन सी आजादी हमें मिलनी चाहिए और कौन सी आजादी हम कहते तो नहीं कर सकते हैं आप यहां, क्यों कि हम भी प्रभावित होते हैं। मतलब तुम स्वतंत्र नहीं है, तुमने एक रोटी खाई कि नहीं खाई उससे तुम्हें ही प्रभावित होगे, समझे ना। और तुमने कहां पेशाब की उसकी बदबू से हम भी प्रभावित होंगे, हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे और खाने पर नहीं लगना चाहिए। आप समझे, लंदन में तो ऐसा है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो स्कूल वाले खुद एक टाइम का खाना वहां देते हैं, और वो खाना शांति जी सबको अनिवार्य है। कोई ये लड़का कहे कि मैं नहीं खाऊंगा और अपने घर से खाना लाऊंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसका क्यों प्रतिबंध है। क्योंकि बच्चों को घरवाले समझते नहीं हैं, तो प्रॉपर डाइट उन्हें नहीं मिलती है। कोई कुछ गरीब हैं गरीबी के कारण, कुछ अमीर हैं लेकिन समझते नहीं हैं, तो वो कौन सा आजकल कौन सा खाना बोलते, बाजार का खाना क्या बोलते उसको, है जंक फूड जो भी समझ लो, वो खाने के चक्कर में उनको नहीं मिलता है, गरीब को गरीब की वजह से नहीं मिलता है। तो उसको वो बैलेंस डाइट का इतना खाना जो चीज कि विटामिन डी की कमी है, कि विटामिन इसकी कमी है तो वो विटामिन वाला खाना वहां दिया जाएगा। यहां जैसा नहीं है घास जैसा चार जैसा परोसी जैसा बना दिया, मास्टरों को सौंप दिया कि तुम बना के दे दो, हैं उसे खिचड़ा बना के दिखला दिया। और तो माने प्रॉपर डाइट वहां उसको एक समय हम दे दें तो वो क्या कहते हैं कि यदि इसको प्रॉपर डाइट मिलेगी तो ये पढ़ सकेगा। कितना सोचते हैं, समझ में आया ना? हमने तो सोचा ही नहीं पहले, हमारे विद्यालय चलते चार रखना पहला अपने सब विद्यार्थियों को प्रॉपर डाइट मिलेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही पढ़ सकते हैं ना। ये बहुत जबरदस्त चिंतमन है। अब इस चिंतमन से क्या प्रभाव पड़ा मैं बता रहा हूं आपको। तुम जानते हो ना ये बंबई में वो ये घाटकोपर का भाई है जो नाटक कंपनी में काम करता था, जो जिस क्या नाम है हसू भाई, उसकी कंपनी थी ना रमेश, हाँ रमेश की कंपनी थी, उसमें एक लंबा चौड़ा मोटा गोसलिया नहीं एक उसका भाई वहां रहता है लंदन में, और वो बहुत क्रियाकांडी है। अब सोनगढ़ में कोई क्रियाकांडी हो सकता है? आप सोचो इतना क्रियाकांडी है, ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना। तो वो अपने बच्चे को कॉलेज का वो खाना खिलाता ही नहीं, खिलाता नहीं तो साथ में रखता, कॉलेज वाले ने निकाल दिया कि वो तुम्हारा खाना खाना पड़ेगा तो ही हम अपने स्कूल में भर्ती करेंगे। और वो कहेगा मैं नहीं खिलाऊंगा, क्यों कि इसमें तुम नॉन वेज होता है, ये होता है, वो होता है, जो सब तकलीफें हैं ना, और होता ही है, मतलब जो भी विटामिन विटामिन भी डालते हैं तो वे कहां ध्यान रखते हैं कि ये हरे निशान वाले हैं कि लाल वाले हैं, है? तो वो खाने नहीं दे रहे। जिसने महेंद्र कुमार सेठी का बंगला खरीदा है उसकी बात करता हूं, है? डगली, हाँ रसिक डगली का भाई वहां है, वो माँ वहां रहती। इतने क्रियाकांडी, इतने मतलब बिल्कुल अलग टाइप के चिड़ियाघर के लोग जैसे, ऐसा लोग हमने भी बहुत समझाया कर दिया, नहीं सुन लिया मैं, और स्कूल से निकाल दिया। निकाल दिया तो पढ़े कैसे, पढ़ाई बंद हो गई। अब तब हमारी समझ में आई कि ये यहां कितनी बड़ी समस्या है। अब आपको हम बता रहे हैं कि आप जाके अमेरिका में बस जाना, लंदन में बस जाना, तो आपके बच्चे को पढ़ना है तो स्कूल का वो मांसाहारी भोजन जो वे खिलाएंगे वो खाना पड़ेगा, यहीं से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी शुरू। कि हम मां बाप में संस्कार होंगे तो वे बचा लेंगे, कैसे बचा लेंगे? ये जो शुद्ध शाकाहारी है ना, हम जैसे लोग, हम उससे कहते भैया तुम्हें यहां रहना है तो तुमको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तुम चले जाओ बम्बई, छोड़ो यहां से, छोड़ना भी नहीं है, अब बच्चे को भी पढ़ाना है, तो हम भी समझाएंगे कि स्कूल के नियम को पालना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब आपके बढ़िया से बढ़िया हितेशी आपको ये सलाह नहीं दे सकते कि तू तो मत खाना, मर जाना चाहे, चाहे बिना ही पढ़े रह जाना, तो उस देश में वो कहे हम बिना पढ़ा नहीं रहने देंगे एक भी बच्चे को। अपना देश में भी ऐसी बातें होती है ना, हमें गवर्नमेंट तो व्यवस्था कर नहीं पाती है क्योंकि इतनी जनसंख्या है, इसलिए स्कूल ही नहीं खोल पाती है, इसलिए वो कड़ाई से प्रतिबंध नहीं लगाती है। यदि जिस दिन उसके हाथ में ये व्यवस्था हो जाएगी कि ये कर सकता है, सब प्रतिबंध लगेंगे। और जिस दिन हाथ में इतना पैसा हो जाएगा गवर्नमेंट के, तो मैं भी जबरदस्ती खिलाएंगे विटामिन के नाम पे, विटामिन पिलाएगी, अभी भी पिलाती है ना कभी कभी दवाई बच्चों को, तुम्हारे घर में आके छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? और फलाना विटामिन फलाना विटामिन, कोई कितने इंजेक्शन लगते हैं, उनका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है। पहले तो एक टीके लगते थे चेचक के, समझिए ना, कोई घर वाले गांव वाले छिप जाते थे, लगाने नहीं देते थे, और जो लगा के जाता था तो ये महिलाएं हमारी मां ने भी गोबर लगा के साफ कर दिया फटाफट उस टीके को। अब समझिए कि आप बच गए इस टीके से, क्योंकि उसको लगाने से बुखार आता था। अभी भी निशान है हमें इस टीके के, दादा को भी होंगे, हमें भी सबको लगते थे। तो बहुत जबरदस्ती मतलब समझते थे इतनी बड़ी गुलामी है जो अंग्रेज लोग हमको जबरदस्ती उसका एक कर रहे हैं। तो अभी हमको मैं तो महासत्ता समझाना है। अब महासत्ता और अवांतर सत्ता के अंदर बीच में क्या बैलेंस बनाना है? बैलेंस है, हमें बनाना नहीं है, हमें तो सिर्फ समझना है। देखो अब ये पंक्ति में कार्य का अर्थ कर रहा हूं, गप्पे नहीं लगा रहा हूं। देखो ये उसी प्रकार इस लोक में सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, महासत्ता की अपेक्षा से एक ही कहे जाते हैं, है ना? तथापि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं। अब ये तो लगा रहे हैं ना, कौन से नए जो भी मतलब द्रव्यार्थी पर्यार्थी में कि में है चर्चा। और अपन निश्चय व्यवहार से कहने से कह देंगे व्यवहार है बस, ये निश्चय नहीं है। अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा वो निश्चय है, क्या विषय है? वो पर ब्रह्मों के साथ जो हमारी एकता की बात है वो व्यवहार की है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऐसे व्यवहार को स्वीकार ही नहीं करते हैं। कुंद कुंद स्पष्ट शब्दों में 27वीं गाथा में स्वीकार करते हैं ना, व्यवहार नहीं वो भाषा जी जीवो देहो अवधि खलु एक को न तो निश्चय न जीवो देहो भी एक। ऐसे लोग हुए हैं लेकिन कि जो इसको देह और आत्मा को एक कहने वाले नए को नए नहीं मानते। क्यों? उस आदमी को अपन को मानना चाहिए, समझ आए कि नहीं आई? जो कुंद कुंद को की गाथाओं को इंकार कर दे कि मैं ये गाथाएं नहीं मानता, एक और गाथा है घटबटर रथानी दब्बानी। हाँ बोलो बोलो। व्यवहार नए कहता है कि आत्मा घटपट और रथ इन द्रव्यों का भी करता है। घटपट समझ गए ना, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा और रथ माने बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी को ही रथ बोलते थे माने, समझ गए ना? तो इनका भी करता है माने बड़ई कुमार और कोरी, कोरी माने बुनकर के दर्जी, ये भी करता है। ऐसा अपने समय से आदमी गाथाएं हैं कुंद कुंद की है ना, इन्हें कोई नहीं माने तो आप उसे मानोगे? क्यों? और दिक्कत हो जाएगी है? बताऊं कौन नहीं मानता है? हाँ ये हमारे विद्यार्थी सब होशियार है के पांडे राजमल जी नहीं मानते। अब मैं कभी कभी थोड़ी टिप्पणी करता हूं राजमल जी के संबंध में तो लोग कहते क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ने उनकी इतना बढ़िया प्रशंसा करी, कलश टीका की प्रशंसा करी, एक ही ये किया ये किया। लेकिन किया मैं ये बोल रहा हूं ना कि कुंद कुंद ये नए मान रहे हैं और ये राजमल जी नहीं मान रहे हैं, तो अब दो में से हम एक ही को मान सकते हैं ना मेरे दादा? लेकिन हमारे लोग इतने होशियार हैं कि नहीं नहीं भाई दो ही को मानेंगे और तुमसे लड़ेंगे, तुम ऐसा क्यों कहते हो? उनके पास कोई जवाब नहीं है, उसका उत्तर नहीं है। उनने इतना क्लियर लिखा है नए चक्र वालों ने कि ये जो मैं नए लिख रहा हूं ये सब नए मैंने कुंद कुंद के समय सारादी ग्रंथों से निकाले हैं। ये कोटेशन संस्कृत भाषा का मैंने नए चक्र में दिया है, तुमने पढ़ा होगा ना? कि नहीं आया? अभी आ जाएगा आगे, समझ में आया ना? एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं यहां का जो पाठ करते हैं वो भी सुनना चाहता हूं, सुनता हूं, और नए चक्र का जो मंगलाचरण का है ना उसमें मुझे बहुत रस है, मैं वो सुनना चाहता हूं। मैं इंतजार करता हूं जब तक नहाने नहीं जाता हूं कि नहीं बैठता हूं जब तक वो मंगलाचरण का पाठ हो जाए, फिर भले ही क्लास सुनू चाहे नहीं सुनू। अब यहां तो है नहीं संजीव, तो आज तुमने मंगलाचरण नहीं किया है, मेरे को तो नहीं किया मेरे हिसाब से। तो वो माइक वाले भी सुन लें समझ लें, बिल्कुल अप टू डेट रखना, क्योंकि एक श्रोता है ये नहीं समझना कोई नहीं सुनता, और मैं तुम्हारे लिए नहीं सुनता हूं, मुझे आनंद आता है। त्रिकालिद्र भगवान आत्मा से शुरू किया, कहां मिलेगा बोलो ऐसा मंगलाचार ना, निकालो पूरा आगम निकाल के लाओ है? क्यों? फिर देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु, फिर सामूहिक, सबको पत्ते पत्ते हम अलग अलग भी सामूहिक भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कलश कलश रखते हैं ना अच्छे, इनका पाठ सुनता हूं मैं, ऐसे ही उसको सुनता हूं। मैं बैठा रहा करीब 7:45 तक, मैं नहाने नहीं गया, बाथरूम खाली पड़ा रहा। जब मैंने कहा भाई, तो जब वो उसने बोला कभी तुमने पाठ नहीं किया, ये नहीं किया, मैंने कहा आज नहीं किया होगा इनने, इसमें अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। ये समझ लो तुम कि यहां जो तुम करते हो, तुम्हारे यहां 4 आदमी हैं कि 500 आदमी हैं, मुझे मतलब नहीं है। मैं उसका पक्का श्रोता हूं, खासकर पाठ का। तुम लोगों का प्रवचन भी मैं सुनता हूं, सबके प्रवचन सुनता हूं, जहां जो ये कार्यक्रम यहां होते हैं वो 90% में सुनता हूं। उतना ही अंतराय होता है कि जितना बीच में मुझे नहाने के लिए 2-5 मिनट में जाना पड़ता है। मैं तो साबुन वाबन तो लगाता नहीं कभी, बस पानी डाला खत्म, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं। तो उतना ही मेरे को अंतराय होता है कि जितना मैं समय नहाने में लगाऊंगा उतना मेरा ये छूट जाएगा। पर्याप्त समय है बीच में, 8:30 क्लास हमारी छूटती है और अपने 9:45 पे अपन शुरू करना चाहते हैं, तो 9:45 पे ही तुम पाठ शुरू करो तो अभी 15 मिनट तो मिल जाते हैं ना। बात तो ये हुई थी कि 8:40 पे पाठ शुरू करोगे, तो मैं 8:40 पे बैठ जाता हूं तुम्हारा पाठ सुनने के लिए। 8:45 तो 8:45 पे बैठूंगा, फिर मैं वहां बैठा बैठा खड़ा खड़ा सुनता रहता हूं, क्योंकि मैं बीच में जाऊंगा तो 2-4 पंक्तियां छूट जाएंगी शांति जी। तो जब उस खत्म होने लगता है तब मैं यहां से आता हूं, पूरी विषय वस्तु का ध्यान देता हूं, रखता हूं ख्याल में रखा है कि ये अपना उपयोग में उपस्थित रहे। इस सूक्ष्म ज्ञान वालों के लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम कितने ही पढ़ के विद्वान बन जाना सब भूल जाओगे। हमारे साथ पढ़े जितने विद्वान है वो सब भूल भाल गए, कुछ नहीं है उन्हें पता। और हम निरंतर इसमें रहे ना तो हमें सब पता है, याद है उससे भी सब याद है, सब चीजें याद है। हाँ तो क्या चल रहा है अपन उसी प्रकार इस लोक में यही पढ़ रहे थे ना। एक क्षेत्र आप गाह रूप से रह रहे हैं, महासत्ता की अपेक्षा एक ही कहे जाते हैं, तथापि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं। देखो यद्यपि यहां तो स्वरूपास्तित्व की मुख्य चर्चा है, इसलिए तथापि के बाद उन्होंने स्वरूपास्तित्व लिए है ना, और इसको फिर कमजोर किया, कहे जाते हैं कह के डाला, और जुदे जुदे हैं ऐसा कहा। लेकिन कभी ऐसा भी प्रतिपादन हो सकता है कि यद्यपि स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं, तथापि महासत्ता की अपेक्षा वे एक ही हैं। ख्याल में आए ना, जब उसकी मुख्यता से बात करनी पड़ेगी और उसका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ेगा, वो एकत्व तो बताना पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्ट है मेरे कहने का मतलब। मैं उस पर वजन यहां क्यों दे रहा हूं, इस पर देना चाहिए, इन्हें खुद नीचे इस पर दिया है, क्योंकि वो तुम्हें पता नहीं है उसका, उसका लोगों को मुखियों को अस्तित्व का पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी ऐसी अपेक्षा भी जनवाणी में एक कई जगह है कि जिसकी अपेक्षा हम और तुम एक हैं, है ना ऐसी अपेक्षा। तो कौन कि ये स्त्री हमारी स्त्री है इसलिए हमारी है, नहीं, एक है परमात्मा, कैसे कौन सी रिश्तेदारी से, कि तुम भी हो और हम भी हैं, इस रिश्तेदारी का नाम क्या है नाम की रिश्तेदारी, क्या नाम रमेश, है नाम की एक रिश्तेदारी है जो तुम भी हो उसी गोत्र के है नाम के और हम भी हैं, इस हिसाब से किससे हमारी रिश्तेदारी नहीं है, गधे के सींग से नहीं है, आकाश के फूल से नहीं है, हैं? बांझ के बेटे से नहीं है, क्या समझिए ना, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है और हमारा अस्तित्व है। इस लोक में विद्यमान सभी चेतन अचेतन पदार्थों से मेरी सत्ता भिन्न ही है, ऐसा निर्णय होने पर ही पर से एकत्व का मोह विलीन हो जाता है। देखो कितनी क्लियर बात लिखी उसमें, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो व्यक्ति जान लो, ये तो भाषा संबंधी ज्ञान है, ये तो शास्त्र से हुआ ज्ञान है, शास्त्र में तो ज्ञान है ही नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है, हैं? वो तो हम अनुभूति करेंगे और तब हम जान लेंगे, और एक पाठ पढ़ लिया है। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हारे ज्ञान में पक्का निर्णय हो गया ना, आगम भी प्रमाण है, वो सर्वज्ञ की वाणी है, उस पर से निर्णय हो गया है, अब मोह के नाश होने में क्या देर रह गई, बोलो। ये आपको पता चल गया कि ये मेरा नहीं है। देखो लोगों को उदाहरण देता हूं कि आपको कोई भरोसा है कि ये मेरा बच्चा है, आपकी पत्नी के पेट से हुआ तो पक्का है ही, और कदाचित कहीं ऐसा हो कि आपकी शादी नहीं की हो, नहीं हुआ, जो भी हो, कुछ भी हो, और कहीं आपका संबंध ऐसा बन गया हो गलत तरीके से और वहां गर्भ रह गया हो, और आपको पक्का भरोसा हो गया कि ये मेरा बच्चा है। समझ, उदाहरण के लिए बोलता हूं, ऐसा होने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अब तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, सारी संपत्ति, उसे दे जाने का भाव आपको रहेगा, क्यों, किसको दे जाए, कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं अपना जिसको दे जाए, तो वो भरोसा आपको रहा तो सारा करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति आप उसे समर्पित करने का भाव रखेंगे। कोई को बता कि इसने क्यों लिया, इसको क्यों लिया, गोद ले लेंगे किसी बहाने से, कैसे ही करके, मतलब आप उससे कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करेंगे ही। अब यदि फिर आपको शक हो गया, ये तो मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि वहां तो शक्ति गुंजाइश बहुत है, कोई दूसरा दावेदार निकल गया, फिर वो क्या होता आजकल टेस्ट है? तो उसके बाद निर्णय हो गया कि तेरा नहीं, उसका है, फिर क्या होगा, उसके बच्चे के भाग्य में भी करोड़ों रुपया मिलने वाले थे, उसका क्या होगा, नहीं नहीं कुछ तो दूंगा, कुछ तो दूंगी, कुछ क्यों देगा। तो वो जो अपनेपन के साथ जो तेरा डिसीजन बदला, वो तो लौकिक था ना, वो तो आगम के आधार पर नहीं था ना, वो तो किसी ने कह दिया था, तेरा भरोसा मात्र था। अब ये तेरे आगम से निर्णय हो गया है कि एक मेरा कोई, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो इसी का नाम तो मोह था, और उसके तो विरुद्ध तेरा निर्णय हो गया है, तो मोह का नाश नहीं हुआ, नहीं वो अनुभूति हो जाएगी, हां मैं कभी मना नहीं करता हूं, तो वो भी हो जाएगी भाई साहब, लेकिन तुम इसकी कीमत नहीं कर रहे, इसकी उपेक्षा कर रहे हो, समझे ना। कैसा कुंद कुंद ने लिखा है, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इसलिए तो शास्त्र अन्य कहें, ऐसा आता क्या नहीं आता, ये पढ़ लिया हमने, तो ये जो तुम इस जड़ शास्त्र को चेतन मानने लग गया था, ऐसा हो गया था कि इसमें वो गलत छप जाए प्रेस की तरफ से, तो अरे ये नहीं है शास्त्र, इसमें तो गलत भी छप सकता है, लेकिन वो जो धारा चली आ रही है ना कौन महावीर से लेकर के और हमारे गुरु पर्यंत, समझे ना, वो शास्त्र है, और उस वो भी आगम प्रमाण है, उसके आधार पर ही निर्णय होता है, और उसके आधार पर आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है। तो मतलब वो जो आपकी इतनी बात रह गई कि सात फेरे पड़ेंगे तब पक्की हो जाएगी, अब सगाई हो गई, नक्की हो गई, मिलना जुलना हो गया, सब बात हो गई, अब अभी अभी नहीं, ये मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे आदमी को क्या कहते हैं अपन, नहीं तो सातवां फेरा पड़ेगा ना, तब होंगे हमें। अरे बेईमान, तब तक तो छूट सकता है ना, इसके मन में ऐसा विकल्प है कि तब तक छूट सकता है, तब तक मुझे सोचने का अधिकार है, ऐसा समझता है। उस जैसे बेईमान जगत में नहीं चलते हैं, मुझे पक्का ही भरोसा रहना होना चाहिए ना, या तो हो ही गया, वो तो कानूनी बात है, हो जाएगी, क्यों होता ना। तो ऐसे ही आगम के आधार पर इतना पक्का भरोसा होना चाहिए कि वो जो आत्मानुभूति होनी होती वो भी हो जाएगी। लेकिन मोह तो खत्म हो गया कि वैसी की वैसी पोजीशन है जैसी पहले मोह था, जैसा पहले उसमें अपनापन था, अभी वैसे ही का वैसा अपनापन है क्या? नहीं है ना। देखो यहां एक प्रश्न होता है क्या, कि यद्यपि ज्ञान जीव का असाधारण गुण है, विशेष गुण है, तथापि सभी वह सभी जीवों में पाया जाता है। अब एक दिक्कत यह है कि उन्होंने कही थी कि विशेष गुण की पहचान से गाथा पढ़ो, इसमें लिखा ना विशेष गुण की पहचान से तुम निर्णय करो आत्मा का, वो गाथा पढ़ो। कौन सा गुणों की पहचान से, कौन सी गाथा में है? लेकिन निर्मोह होना चाहते हो तो,
निर्मोह होना चाहते तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो स्वपर में जिन मार्ग के आधार से।
जिन मार्ग के आधार माने शास्त्रों के आधार से तुम ये निर्णय करो कि स्व अलग है पर अलग है, ये कहते हैं ना गुणों की पहचान से करो। तो अब गुण को कौन से गुण, तो इसकी टीका में लिखा है कि विशेष गुण देना। क्यों लिखा तो है नहीं, क्योंकि परिभाषा विशेष गुण ही बनते हैं, लिखकर समझ में आए ना। तो ये ने टीकाकार ने लिख दिया तो अपन ने मान लिया। अब इसमें भी एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलो, कि वो ज्ञान नाम का जो गुण है ना वो विशेष भी है और सामान्य भी है। क्या समझ में सुना, हम तो छह सामान्य गुण पढ़े उनमें तो नहीं है। अभी क्या तुमने जो पढ़े उतने ही शास्त्र नहीं है, शास्त्र बहुत है। क्यों, वो सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। विशेष गुण तो आप जानते ही हो क्योंकि जीव का है, पुद्गल में नहीं घटित होगा, धर्म अधर्म आकाश काल में घटित नहीं होगा। और सामान्य क्यों है, क्योंकि सब जीवों में घटित होगा। तो हमारा भेद विज्ञान की सिद्धि में पूरा काम नहीं चला इससे, इससे काम नहीं चला हमारा। ये सद्रव्य लक्षणम से तो काम चला ही नहीं, ये तो एकता बताता है। फिर चित्त द्रव्य लक्षणम, चेतना लक्षण जीवा, इससे भी बहुत काम हुआ लेकिन पूरा नहीं चला। क्या बाकी रह गया, कि इसने अन्य जीवों से हमें पृथक सिद्ध नहीं किया, समझ नहीं ना। अन्य द्रव्यों से तो किया, शास्त्र में आता है सत सामान्य और चित्त सामान्य, ये पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कि चित्त भी सामान्य होता है, चित्त माने ज्ञान गुण, चेतना भी सामान्य होती है। तो अब विशेष जानने के लिए हम क्या करेंगे बोलो। एक सूत्र आता है जना जना में सब में चलता है, बहुत मार्मिक है, सच्चिदानंद बोलते ना, कुछ हिंदू लोग जैसे वो सच्चिदानंद बोलते रहते हैं, जैसे नमोकार मंत्र जैसा, ऐसा ही जपने लायक है वो जैनियों को भी, क्योंकि सत्य से हमें अपने अस्तित्व का पता चला। वो नहीं मानेंगे तो हमने महासत्ता को इंकार किया, चित्त नहीं मानेंगे तो हमने अपनी चेतनता से इंकार किया, और आनंद नहीं मानेंगे तो दूसरे द्रव्य से भिन्न हमें सिद्ध करता है, दूसरे आत्मा से। तुम्हारा आनंद तुम में और हमारा आनंद हम में, सबका आनंद एक नहीं है। हमारा आनंद हमारे लिए भोग्य है, समझ में आया, और तुम्हारा आनंद हमारे लिए गेय है। हमारा राग हमारे लिए भोग्य है, तुम्हारा राग हमारे लिए गेय है। तुम्हारे राग को हम सिर्फ जानेंगे, हमारा दुख हमारे लिए भोग्य है और तुम्हारा दुख हमारे लिए ये है। तो सच्चिदानंद तीन हो गए ना, सब चित आनंद, तब हम अपने आत्मा में पहुंच पाएंगे। तो सूत्र अच्छा है ना, सच्चिदानंद। समय सार के मंगलाचरण में है, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। क्या अर्थ है भावाय? माने वस्तु त्रिकाल, ये महासत्ता सत। चित स्वभावाय माने ये चेतना, चित सामान्य, और सर्वभावांतर छिदे सब पदार्थों को जानने की शक्ति, जानना ये पर्याय। द्विगुण पर्याय तीनों आ गए, हमारी भिन्नता सिद्ध हो गई। नमः समय साराये, कैसा है समय सार? भावाये के जो है चित स्वभाव है वो सब पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला है। जानता है नहीं जानता है, जब अभी हाल कहां जानता है ना, जानने के स्वभाव वाला है ऐसा भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूं। समय सार में ये शैली अपनाई है, किसको? अमृत चंद्र ने। कुंद कुंद ने तो सीधा बंदित्व सिद्ध कर सभ्य सिद्धि कहकर छुट्टी कर दी, लेकिन उनने सबसे पहले तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को याद किया और फिर दूसरे नंबर पे अनेकांत को याद किया। उस जिनवाणी की बात भी नहीं करते, उन्हें अनेकांत के नाम पर जिनवाणी कहते हैं, क्योंकि अनेकांत चिन्ह है, आता ना वो क्या क्या शब्द है, साध वाद चिन्ह से चिन्हित, एक जगह आता है। और फिर तीसरा तीन छंद है ना, क्या क्या बोलो? हाँ, फिर तीसरे में प्रतिज्ञा झगड़ा खत्म। बस दो दो बातें हैं, एक अपना त्रिकाली ध्रुव, एक अनेकांत सिद्धांत, वहां भी जनवाणी नहीं अनेकांत सिद्धांत है ना। और तीसरा बस मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुमको ये बताऊंगा, बस थोड़ा छंद तीसरा।
दधिरथ मनुभाग्या व्याप्ति कल्मासताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्मूते भगवत में सार व्याख्यानुभूत।
हिंदी बोलो।
मैं तो शुद्ध मात चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से।
अब चलो अब यहीं पढ़ते हैं, है ना, ये रह जाएगा नहीं तो आज भी। यहाँ एक प्रश्न होता है, यद्यपि ज्ञान जीव का साधारण गुण है, विशेष गुण है, तथापि वह सभी जीवों में पाया जाता है। सभी जीवों में पाए जाने के कारण एक प्रकार से वह सामान्य गुण भी है। यही समझा रहा ना अपन। इस ज्ञान नामक गुण के माध्यम से जड़ से भिन्न तो सब जीवों को जाना जा सकता है, परंतु पर जीवों से भिन्न अपने आत्मा को नहीं जाना जा सकता। खबर तो पर जीवों से भी भिन्न निज आत्मा को जानना है, हम उसे कैसे जाने? तो अगर मेरा ज्ञान गुण मेरे में है और तेरा ज्ञान गुण तेरे में है, तो मेरे लिए तो वो ज्ञान है और तेरा ज्ञान गुण मेरे लिए ज्ञेय है। मेरा ज्ञान गुण मेरे में है और आपका ज्ञान गुण आप में है। मेरा ज्ञान गुण ही मेरे लिए ज्ञान है, क्योंकि मैं तो उसी से जानने का काम करता हूं, पर आपके ज्ञान गुण से नहीं। आपका ज्ञान गुण मेरे लिए एक प्रकार से ज्ञान नहीं ज्ञेय है, अन्य ज्ञेयों के समान यह भी एक ज्ञेय है। हम मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो एक तरह समझाया था यहां कि ये जो कल हमने समझा था वो हमारा ज्ञान है, वो तो ज्ञेय बन गया। हम आप कहेंगे क्या समझाया था बताओ कल, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसमें से लाइब्रेरी में से निकालना पड़ेगा। लाइब्रेरी माने स्मृति की लाइब्रेरी, तो तुमने स्मृति में रखी ना, तो वहां है वो ज्ञेय के रूप में। अब तुम उसे ज्ञेय बनाओगे, तो कल तो ज्ञान था और आज की तो उसकी गेय की हैसियत रहेगी। कल तो वो दूल्हा बन के आया था अपने दरवाजे पे, अब आ जाओ दूसरी लड़की की शादी होगा उसी के भाई से तो फिर बराती बन के आएगा, फिर वो दूल्हा बन के नहीं आएगा, फिर बराती बन के आएगा कि नहीं आएगा, स्थिति बदल जाएगी। तो ये हमारा जितना ज्ञान तुम्हारे पास इतनी होगी ना, डिग्रियां मिग्रियां ये सब ज्ञान की नहीं है, गेय की है, है ना। चलो आगे क्या है। अतः अपने ज्ञान गुण से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो, है ना। अपने ज्ञान गुण से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो, पहचानो और उसी में जम जाओ, रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। ये सब जो अपन ने लिखा है, ये सब वो जो टीका में और गाथा में से निकलता है वही चीज है, है ना। विगत गाथा में यह कहा गया है कि सुपर का विवेक धारण करने वालों को मोहंकार उत्पन्न नहीं होता। वही कह रहे हैं ना कि स्वपर का विवेक हो गया ना शास्त्र से भी युक्ति से भी, तो उनको मोह का अंकुर पैदा नहीं होगा, फलेगा फूलेगा नहीं वो। इसलिए हमें भेद विज्ञान पूर्वक सुपर को जानने में पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। भेद विज्ञान पूर्वक सुपर को जानने में, देखो अब क्या करना, अब क्या जानने रह गया, आचार्य खुद नक्की किए तुम्हें क्या काम है। फिर मैं बार बार नहीं कहूंगा, नहीं लगोगे आप तो उनके शत्रु हो गए। उनने ये नहीं कहा कि व्रत करो, उपवास करो, यात्रा करो, घूमने जाओ, ये नहीं करो, गुरु जी के पैर चरण कमल धो, ये कुछ नहीं कहा। तो नहीं तो गुरु जी के चरण कमल नहीं धोना चाहिए। अरे मैं नहीं कह रहा हूं खूब धो ना, जिसको जिसके धोना हो खूब धो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कह रहा है कि अपनी पूरी ताकत स्वपर के जानने में लगा देनी चाहिए। इतनी सी बात इसमें लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि जिस श्रवण को ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, अब तो कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे साहब, अब तो तुम सीधी बात कह रहे हो, देखा ना। जिस श्रवण को ऐसा भेद ज्ञान नहीं है वह श्रवण श्रवण ही नहीं है, श्रवणाभास है। जिनेन्द्र देव द्वारा कथित पदार्थों के सिद्धांत बिना श्रद्धात्मानुभव रूप धर्म की प्राप्ति नहीं होती। ये बात अब अगली गाथा में कहने वाले हैं। देखो ऊपर लिखा ना, अथ जिनोदितार्थ सिद्धांत मंत्रेण। क्या अर्थ है इसका भाई, तुम संस्कृत वाले जानो, बिना संस्कृत वालों को बताओ क्या अर्थ है इसका, संस्कृत से ही बताओ। देखो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो वस्तु का स्वरूप, उसके सिद्धांत के बिना धर्म लाभ नहीं होता। क्या कह रहे हैं, माने मेरे तुम जिसको गिनते ही नहीं हो कुछ, वो एक चल गए ना तुर्रा आत्मानुभूति, आत्मानुभूति के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें दादा आचार्य का वचन है, अर्थ जिनोदित अर्थ सिद्धांत मंत्रेण, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उस पदार्थ का सिद्धांत को मंत्रेण माने छोड़कर, सिद्धांत के बिना धर्म लाभ न भवती, धर्म लाभ नहीं होता है। अब इस बात को तर्क से सिद्ध करते हैं, वो गाथा अपन कल पढ़ेंगे, हो गया क्या अच्छा है अभी, चलो गाथा पढ़ो।
सत्ता संबद्धे दे सविशेषे जो हिड़े बसामण्य, सत्तहदिनी सो समगो तत्तो धम्मोण संभवदी। द्रव्य जो सविशेष सत्ता मई उसकी दृष्टि न, तो श्रमण हो पर उस श्रमण से धर्म का उद्भव नहीं।
कितना स्पष्ट है, द्रव्य से सविशेष सत्तामयी उसकी दृष्टि ना, जो द्रव्य माने अपना भगवान आत्मा, सत्ता विशेष माने सामान्य सत्ता कौन, महासत्ता, विशेष सत्ता कौन, अवान्तर स्वरूपास्तित्व, उसका नाम क्या है, सादृश्य अस्तित्व। महासत्ता का नाम क्या है, सादृश्य अस्तित्व। और अपना अवान्तर सत्ता जो ये है ना, उसका नाम क्या है। अभी अवान्तर सत्ता वगैरह के बारे में जब वहां चर्चा आएगी तब मैं विस्तार से बात करूंगा। हैं? उसकी दृष्टि जिसको नहीं है, माने ये बात जिसने नहीं समझी है, बस मोटी मोटी बातें जो बात यहां समझाई जा रही है, ये बात जिस मुनिराज के ख्याल में नहीं है, उस श्रवण से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, धर्म का उद्भव नहीं। उद्भव तो क्या होना, माने उसको भी नहीं है और दूसरे को भी नहीं हो सकता। अभी क्लियर लिखा है, बोलो केला जी, इस प्रवचन सार में से एक गाथा निकाल दूं। अपन तो एक एक पंक्ति से पढ़ते हैं ना, अपन ऐसा तो है नहीं, अपने सोनगढ़ वालों में ही था, फलानी गाथा, फलानी गाथा, 80वीं गाथा, 72वीं गाथा, फलानी गाथा पढ़ो। अपन तो आपदो पांत एक एक गाथा पढ़ी, और अपने नहीं, अपने गुरुदेव भी पढ़ते थे। गुरुदेव तो इतने इतने पक्के थे कि वो 20 गाथाएं 20 कलश एक से हैं। क्यों, एक ऐसे बद्दो न तथा परस। तो हम तो दो का पढ़ के कहेंगे बाकी ऐसे ही लगा लेना, ये 20 बोल सेट कर लेना। वे नहीं, वे तो अपने आराम से शांति से पढ़ते रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था शांति जी कि पूरे शिविर में वे शुरू हो गए, तो 20 दिन तक वे बेई बेई पढ़ते रहे और पूरा शिविर निकल गया, हजारों लोग आए और सुन के चले गए। उनको ये विकल्प नहीं आया कि थोड़े आगे दिशा तो बढ़े। वो ही बात उनने एकस्य बद्धो वाले कलश में समझाई, फिर दूसरा एकस्य भातो एकस्य फलाना जो जो भी है, फिर एक बस वो ही बिल्कुल हू बहू उन्हीं शब्दों में वे दोहराते गए। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ किया, आचार्य ने लिखी है, आचार्य ने रिपीट करने में कोई आलस नहीं किया। तो मेरा समय आचार्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, मैं ऐसा निपटा दूं कि तुम समझ लेना। उनने तो अपने शिष्यों पर नहीं छोड़ा, उनने किया है तो हमें बताना चाहिए ना पूरा। हम तो कहते आधा पढ़ाते, आधा कहे तुम पढ़ लेना, आधा कहते तुम पढ़ लेना, कह देते कि नहीं कह देते। हर क्लास में ही ऐसा चलता है आजकल, तो हिंदी संस्कृत वाले तुम्हें पढ़ाते होंगे, अंग्रेजी वाले वे भी कह देते होंगे ये हमने पढ़ा दिया, ये तुम पढ़ लेना, ये हमारे पढ़ा दिया। पूरा तो कोई पढ़ाते ही नहीं है। कभी गुरुदेव के टेप सुनना, उन कलशों पे ही सुनना, तो आपको पता चलेगा। हाँ देखो, इस गाथा का अपना भी अर्थ पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, है ना, ज्यादा कठिन नहीं है ना, तो बार बार पढ़ने में मुझे मजा नहीं आता। सादृश्य अस्तित्व से समानता को धारण करते हुए भी स्वरूपास्तित्व से विशेषता से युक्त द्रव्यों को, एक कार्य का अर्थ है सविशेषे का, सत्ता संबंधित सविशेषे, विशेष की बात करी ना, सामान्य की छोड़ दी गया था मैं, तो वो कहते हैं सत्ता संबंध है, सत्ता माने सामान्य सत्ता, सादृश अस्तित्व के से समानता को धारण करते हुए भी स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा विशेषता से युक्त द्रव्यों को सुपर भेद विज्ञान पूर्वक न जानता हुआ, न तो जानता है वो, न श्रद्धा करता हुआ, जो जीव मात्र श्रवणता माने द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है। वो जो भी क्रियाकांड करता है ना, इनको नहीं जानने वाला, उसको क्या नाम दिया शांति जी, हाँ, दमन करना नाम दिया है, क्लिष्ट शब्द दिया है संस्कृत में है? अब आप समझ लो, यदि आप ये समझते हो कि ये बात वो नहीं समझते हैं, नहीं कहते हैं, तो जो कुछ भी है धर्म के नाम पर हो रहा है वो दमन है। कहीं से ऐसा समझ लिया है, ये क्रियाएं करना इससे धर्म होता है। अब जो जड़ की क्रिया स्पष्ट है उससे आत्मा का कोई लेना ही देना नहीं है। जैसे मान लो उपवास है, तो उपवास में तो शरीर के लिए भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा को भी तकलीफ तो होती है ना, छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये तो ही छोड़ दो, अब ये कैसी कीमत है कि इस शरीर को ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, तो तुम्हारा धर्म। अब इसमें क्या हो गया? अभी मैं वो कहना नहीं चाहता हूं, नहीं तो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर कर देना, धर्म हो जाएगा। कैसे धर्म हो गया? फिर समेट के थोड़ा कम कम चढ़ाओ, एक दूसरे को उपदेश देता है, नहीं मैं तो चढ़ाऊंगा जितना चढ़ाना। अरे भाई कितना द्रव्य लगता है इतना पता नहीं है? मैंने कह दिया ना मैं जितना चढ़ाना चढ़ाऊंगा, तो घर से लाओ, ये सब मंदिर की सामग्री है, सब माली के घर चला जा, काय की पूजा कर रहा है। तो भगवान नहीं दिखता, माली दिखता है, दरअसल दिखता है, अपने घर से लाना पड़े तो थोड़ा थोड़ा चढ़ाना यहीं का हो जाए। तो क्यों, तो यदि वो मंदिर का ही है तो ऐसा ही हुआ ना, गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं, हो गई पूजा। उन्होंने कहा इतनी बढ़िया है ना, झंझट में काय को रखा, घर से कुछ नहीं, आराम से गए, एक तौलिया ले गए, बहुत है। गंगा जी में डुबकी लगाई, उन्होंने देखा है गंगा जी वालों को, एक एक तौलिया होती वैसी, इसे कंधे पर डाल के ले जाते हैं, बस डुबकी लगाई, उससे आंगमांग पहुंचा एक कपड़े और बस पर ले गए, उसमें ही पानी में से लोटा ले जाते हैं, तो उसी गंगा में से ऐसा लोटा भर लिया और उसी गंगा के में पैर रखकर, पैर भी डूबे रहते हैं घुटने तक, और डक करके गंगा को अर्पण कर दिया। वो बोलते बोल पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं और गंगा की पूजा हो गई। क्या करना बोलो, अच्छा है। हम भी कोई पीछे तो नहीं, हमने नहीं दो ही व्यवस्थाएं बना ली हैं, गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं है? मैंने मेरे कहने का अंदर ऐसा कोई ये, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये लिख रहे हैं, श्रवणता आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है, जिसे रेत और स्वर्ण करों का अंतर ज्ञात नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है। उन धूल को धोने वाले पुरुषों को जिस प्रकार स्वर्ण लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उक्त श्रवणाभासों को निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। ये धूल धोया जानते हो कि नहीं बोलते हैं? जो सर्राफा का बाजार होता है ना, तो सर्राफा बाजार में वो सर्राफे की दुकानें भी होती हैं जो सोना को गलाती हैं, और ऐसी कण उसके निकलते हैं, ये होते हैं, लेन देन होता है, तो बहुत बारीक बारीक चीजें होती हैं, हीरा होते हैं, तो हाथ से छूट जाता है, फिर नहीं मिलता है, तो नीचे नली में चला जाता है। जो दुकान की सफाई करते हैं तो नली में चला जाता है। तो कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं कि वो नली में से सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं। यहां सराफा बाजार बंद हुआ और वो लोग आए और नली में से जितना कूड़ा करकट है उसे लेकर अपने उसमें बर्तन में रख लेते हैं। फिर उसमें धूल है, मिट्टी है, सब है, तो उसको पानी डाल डाल के धोते हैं, छन्नी लगा करके ऐसा कर करके, और उसमें से एक स्वर्ण के कण हीरा ऐसी कोई चीजें मिलती हैं। तो उन लोगों का नाम है धूल धोया, माने धूल को धोने वाले। धूल को और तो कोई धोएगा नहीं, क्या करना है? धूल से हमें धोने से क्या मतलब है? लेकिन उन्हें वो स्वर्ण कण चाहिए। अब वो जो धूल धोया है, वो जो जो चीजें उसमें मिलती हैं, कंकड़ पत्थर हैं, वो पहचानते ही नहीं कि सोने का कण कौन है और ये धूल का मिट्टी का कण कौन है। यदि वो ये जानता नहीं है तो वो सोने का कण को फेंक देगा, मिट्टी के उठा लेगा। उन धूल धोए को जब ही लाभ हो सकता है कि जब वो कम से कम स्वर्ण को पहचाने। ऐसे ही ये आत्मा का लाभ उसको ही हो सकता है जो आत्मा को पहचाने, और जो आत्मा को पहचानते ही नहीं, आत्मा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो उनको धर्म का लाभ कैसे होगा। देखो या पढ़ता हूं द्वारा एकदम, जिसे रेत और स्वर्ण कणों का अंतर ज्ञात नहीं है, ख्याल में है ना, उस धूल को धोने वाले पुरुष को, धूल धोया शब्द है जो संस्कृत में धूल धोया ही पड़ा होगा, है ना, धूली धाब का है ना, धूल धोने वाला लिखा ना, पुरुष को जिस प्रकार स्वर्ण लाभ नहीं होता उसी प्रकार उक्त श्रवण में से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। अब इतनी स्पष्ट बातें हैं, अभी जिसको समझना हो वो समझे, नहीं समझना हो नहीं समझे, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। आगम ये शास्त्र तो प्रतिबंधित नहीं है, ये शास्त्र है जो अपने यहां से छपा है, तो ये कहीं से भी छपा हो तो इसमें यही लिखा होगा। संस्कृत में तो कम से कम वही शब्द होंगे ना, हिंदी अनुवाद अलग होगा, किसी ने किया होगा, लेकिन संस्कृत तो कोई नहीं बदल देगा आचार्य की, तो वो चीजें तो सब उपलब्ध है ना सबको है, लेकिन उसकी महिमा नहीं है तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इतनी बात तो अभी गाथा से सिद्ध हो गई, अब आचार्य क्या करेंगे, यहां से वहां से पकड़ेंगे पहली गाथा से, प्रयोजन सार का जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शुरू हुआ था, जब लिखा ना उपशम में आमी सम्मम जत्तो निम्बान सम्मति, कौन सी गाथा, पांचवी गाथा की दूसरी पंक्ति है ना, छठी गाथा, ये खुद इसमें लिखा है कि ये छठवीं गाथा में हमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, फिर फलानी जगह हमने ऐसा बताया था, कौन सी अगली गाथा जो फिर दी है ना, उस गाथा में हमने ये बताया था, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन उनने तो वो पंक्ति बताई, फिर वो गाथा लिखी कि ऐसा ऐसा कहा था। अब हम उसका वर्णन करते करते हमने बीच में फिर क्या किया, कोई ऐसे आत्मा को प्राप्त करने के लिए शुद्धोपयोग की बात होती है, फिर वो बताई थी हमने, फिर हमने शुद्धोपयोग से जो प्राप्त होने वाले ज्ञान और सुख उसकी बात हमने विस्तार से बताई थी, और उसके बाद हमने शुभोपयोग की बात भी विस्तार से बताई थी, और अब हम यहां तक आ गए। पूरा इस टीका में बताएंगे, पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे, है ना, देखना तुम लोग पढ़ के जाना, ऐसी कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, समझे ना, ये सब हमने ऐसा किया, अब हम ऐसा करते करते इस गाथा तक कैसे आ गए हैं वो पूरा उनको ख्याल में है। सचमुच अपना अध्ययन तभी कहलाएगा सच्चा जब अपन को बिल्कुल एक एक चीज याद रहे, एक एक चीज याद रहे। हमने प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वहां से शुरू किया था, क्या उपसमयामी सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूं, तो वो साम्य भाव क्या है, वहां से शुरू किया था और अब यहां पर मैं यहां पर आ गया हूं यहां तक। ऐसी बात रोजाना हमारे ध्यान में घूमना चाहिए। इतनी लंबी की बात मैं इसलिए नहीं, दस पांच गाथाओं का पाठ कराता हूं कि कम से कम आगे पीछे का जो संपर्क चल रहा है ना उसका तो हमारे को ख्याल में रहे ना। शास्त्र में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अपना जो सोधर्मेंद्र होता है या कौन कौन होते हैं, फिर द्वादशांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में कर लेते हैं, तो कितने जल्दी जल्दी बोलते होंगे, बोलते ही नहीं है तो पाठ कैसे कर लेते हैं, क्योंकि बोलने में तो भाषा है, भाषा है, जो जितना उच्चारण में समय लगेगा वो तो लगेगा, उसे थोड़ी देर कम कर सकते हैं। तो क्या होता है, अपने उपयोग में जो जो द्वादशांग में कहा है उसे घुमा लेते हैं। मैं तब से ये जानता हूं और मैं लोगों को उदाहरण देके बताता हूं, तत्वासूत्र पर बताता था कि मैं आपको तत्वासूत्र का पाठ पांच मिनट में करके बता सकता हूं। पांच मिनट में कैसे करोगे, मेरे को बहुत बुढ़ी अम्माएं आती थी ना तो उनको पाठ सुनाना पड़ता था, तो आध पौन घंटा लग जाता था। अब कल पेपर है, ऐसे बीच में आध पौन घंटा लग जाए तो बहुत तकलीफ का काम था, तो कुछ सूत्र पढ़ता कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं मतलब पूरा पहले अध्याय के पहले सूत्र में क्या है अपने उपयोग में उसको पूरा घुमाता हुआ पांच मिनट में अंतिम जो सूत्र है ना वहां तक पहुंच जाता है। हो गया सत्वासूत्र का पूरा असली पाठ हुआ है, तुम पढ़ते हो उसको कोई कीमत नहीं है, उसमें क्या वर्णन है वो सब समय सार का हरिप्रवचन सार का। मैं ये सब मेरे को ऐसा है कि उसकी विषय वस्तु पांच मिनट में मेरे दिमाग में घूम जाती है पूरी। क्या समय सार में क्या नहीं तो फिर क्या फायदा, करते जाओ एक तरफ चलते जाओ फिर दूसरे हटाते जाओ फिर क्या फायदा। इधर अब टाइम हो गया मुझे मालूम है, इधर ये पंडित कैलाश चंद जी आए थे 15 दिन को अपन ने बुलाया था कि ये हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाएं, तो उसे क्या पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। तो उस वक्त भारतीय ज्ञानपीठ से अपने कौन आचार्य जी माइल्य धवल का नए चक्र प्रकाशित हुआ था और जिसकी टीका पंडित जी ने की थी वो ताजा ताजा प्रकाशित होकर आया था और मैं नए चक्र पे लिख रहा था, जो नए चक्र पे व्याख्यान देता था सब करता था बहुत। तो कि साहब नए चक्र पंडित जी से सुनना चाहिए क्योंकि इनने अभी टीका की है माइल्य धवल के नए चक्र की, तो महत्वपूर्ण बातें अपन को प्राप्त होंगी। तो हमने जाकर उनसे निवेदन किया कि साहब हमको आप नए चक्र सुना दिए। बोले देखो भाई वो तो मैंने लिखा था, जब लिखा होगा लिख दिया होगा, उसे तो 2 महीना हो गए, अब थोड़ी मुझे कुछ पता है। ऐसा भी स्पष्ट शब्दों में बोले, जो लिखा था जो लिख दिया होगा अब थोड़ी मुझे पता है, मैं क्या बताऊं, मैं तो गोमर सार पढ़ाऊंगा। तो गोमर सार भी उनने वहीं पर टीका की थी और वो भी छपी थी, एक आध साल पहले छपी होगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है गोमर सार पढ़ाओ। तो वो गोमर सार पढ़ा बोते थे तो पूरा यहां पढ़ना शुरू करते थे तो 1 घंटे तक ऐसी गर्दन ऊपर नहीं करते, पढ़ते जाते थे। पंडित जी एक अगली हमारे बच्चा विद्यार्थी पढ़ लेंगे, आपको बुलाए इसलिए थोड़ी बुलाया। कह नहीं भाई बांचना तो ऐसी ही होती है, ये जो होती है ना आचार्यों के विद्यासागर जी के यहां फलाने यहां की जहां जो बांचना होती है ना वो सब ऐसी बांचना करवाते हैं, उस पंडित को गर्दन ऊपर नहीं उठाने देते, उसे एक शब्द नहीं बोलने देते, चाहे फूलचंद जी से करवाए चाहे जगन मोहनलाल जी से करवाए। अब वो ऐसा गौरव के साथ विद्यासागर जी के सामने वो धबला की बांचना चल रही है, अब बस वो पंडित एक पढ़ता जाता है और सब बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं नींद लेते रहते हैं, ऐसी बांचना होती थी। तो हमने कहा भैया अब तो सब विद्यार्थियों को कहा था, शांति जी जब विद्यार्थी थे तो शांति समझाया इनको सबको कि देखो अब 15 दिन बहुत शांति से निकालना है, क्योंकि इनको यदि अरुचि हो गई अपन से तो ये सारे देश में जाएंगे और अपने विद्यालय की बुराई करेंगे तो अपन को बहुत बदनाम हो जाएंगे, 15 दिन जैसा करें हां हूं करके निकालो और दोबारा नहीं बुलाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं टीवी पे जाएगा जाएगा क्या करेंगे, लेकिन सच्ची घटना है बिल्कुल कि वो पट अन्ना जी चाहते थे कि यहां विप्रवचन नहीं करते थे शाम का तो मुझको ही करना पड़ता था, तो वो चाहते थे कि अपन जो यहां चलाते हैं वो पंडित जी सुने, पंडित जी प्रवचन में आते नहीं थे अपने कमरे में बैठे रहते थे। तो अन्ना जी को बहुत शौक चल रहा था तो इन्होंने डोरी लगवा कर उनके कमरे में लगवा दिया स्पीकर कि अब यहां तो सुनेंगे, समझना। तो वो सुने तो आवाज हो वहां तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो वहां पर वो मोरनी लगवाया कि बंद कर सकें तो बंद कर दे। तो 1 घंटे में परेशान हो गए तो घटता हुई जाके दर्शन करके उन्हें भी हटवा दिया। क्या कि हमने सबका प्रयोग किया है, सबको बुलवाया है, सबसे पढ़वाया है, ये सब किया है भाई साहब बहुत सम्मान के साथ, बिल्कुल आज तक हमारे मन में किसी के प्रति भी अपमान का रंच मात्र भी भाव नहीं है, महाराजों के प्रति तो होने का सवाल ही नहीं है, किसी के विद्वान के प्रति भी। लेकिन भाई उपयोग तो कैसा होना चाहिए, हम अपने विद्यार्थियों को बुला के यहां रखा है तो इनके समय की कीमत तो करें, क्या करनी चाहेंगे ना, कि कैसे विद्वान बनेंगे, ऐसे पढ़ पढ़ के बनेंगे, ऐसे पढ़ हम घर में नहीं पढ़ सकते हैं। अभी कल करेंगे, बाकी चलो हो गया।